एक बार गुस्सा चढ़ा था दिल्ली में, और दूसरी बार अब जो बात दिल में आ गई कि इस मुकंदास को करें क्या, आत्म परम धाम की है। और इतना जीव, ये जो ऐसे बातें हो जाती है ना, आत्मा नहीं करती, जीव अंदर कोई ऐसा नरकी होता है जो कि इन चीजों से छुटकारा नहीं पा पाता। और हम समझते हैं ले आत्मा परम धाम की बनी फिर दी, देखो जरा इसकी शक्ल कैसे काम करता है। अरे भाई आत्म नहीं है कुछ भी कर रही, आत्म तो वो काम करेगी जब उसको अपना तन मिलेगा। तो उसका तन कहाँ है? परम धाम में। या तो उसको तन मिले तो वो देखो फिर मोमिन कैसे अपनी रहनी करके दिखाते हैं। क्यों, हम जब मोमिन की रहनी वाणी में पढ़ते हैं तो मोमिनों की रहनी पढ़ के तो हम सब सुंदर साथ अपने हौसले छोड़ लो गए मर गए। यहाँ तो मोमिनों की रहनी ऐसी लिखी है, उनमें से तो हमारे अंदर एक भी गुण नहीं। अब यही हमारी भूल है, जो ब्रह्म सृष्टि है वो हमारी आत्म है, ये जीव या शरीर हमारा ब्रह्म सृष्टि नहीं है। अब जीव ना जाने किन किन जन्मों का नरकी और पापी है, ये तो राजी महाराज की वाणी, जितनी वो सुनेगा उतना ही तो निर्मल होगा। अब मुकंदास जी स्वामी जी को जब छोड़ के आ गए थे तो उसने ऐसा काम किया भी है तो कोई बुरा नहीं किया, क्योंकि उसका जीव ऐसे नरक में घुसा हुआ था। और स्वामी जी ने तो अवगुण निकाल ले, बाप का बेटा अगर बुरे रास्ते जाता है तो कौन उसको सीधे रास्ते करेगा, लिहाज कर देना चलो इसी की करना है, मरेगा खपेगा। स्वामी जी ने सोचा कि मेरे खुदते खुदते जब तक राजी ने स्तन से काम लेना है, अगर सुंदर साथ में ये चीजें आ जाएंगी तो एक दिल एक धनी एक धर्म, और हमने 14 लोक को अखंड करना है तो सुंदर साथ के अंदर ही अगर ये तफरके आ जाएंगे काम कैसे चलेंगे। इस वास्ते लालदास को बुलाया, लालदास कल 5-7 नाइयों का भी प्रबंध कर लेना, और जितने आदमी आदमी हैं इनके वास्ते फकीरी भेष धारण करने के लिए चीरक वस्त्र जोड़ा जोड़ा पोशाक खरीद करके बाजार से परसों उदयपुर ताल पर चलेंगे। ठीक, वहां मतलब ही नहीं था, हुक्म हुआ और जी हाँ जी, ये मतलब ही नहीं पूछना किन के लिए कि या स्वामी जी क्यों ऐसा करना, मोमिन ये नहीं पूछा करते क्यों और क्या, हुक्म हुआ जी बस तैयारी हो गई। परसों के दिन सुंदर साथ सबको ले जा करके स्वामी जी उदयपुर ताल पे चले गए, और जाकर के मुकंदास को ही पहले खड़ा किया, कहने लगे भाई जरा ये बता, हिंदुओं के ग्रंथों में भी लिखा है कि जिस जगह पर भगत भगवान का पैदा हो जाए वहां पर जाति पाति के भेद कभी भी देखने नहीं चाहिए। और उन्हें समझाया वाल्मीकि कौन था, चमार जाति का था वाल्मीकि, लेकिन वाल्मीकि को जो पद मिला है वो किसी को भी नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल से जाति पाती है, लेकिन जो इस तन को पा करके आगे के मार्ग पे चल जाता है। और स्वामी जी ने वाणी में भी कहा कि एक तरफ पंडित है लेकिन दुष्ट कर्म करता है, और पार ब्रह्म के ज्ञान को वो जानता नहीं, और दूसरी तरफ है चंडाल है। ये वाणी की बात बता रहा हूं, बीते शास्त्र में नहीं है ये, दूसरी तरफ चंडाल है जो बकरे का मांस कटा हुआ लाता है और रख के अपनी दुकान पे बेच करके पेट पालता है, लेकिन हर समय हृदय में उस भगवान गोपाल श्री राजीव राय का स्मरण करता है। बोलो किसके पांव छूने चाहिए, चंडाल के कि ऐसे पंडित के जो पापी हो? कहते हैं दुनिया तो पंडित के पांव छुएगी क्योंकि पंडित शब्द है इसलिए, लेकिन नहीं, चरण उसके छुओ भले वो चंडाल है भले वो मंगी है जिसके हृदय में राज्य का सुमरन है और हृदय निर्मल है। इस वास्ते मुकंदास तूने क्या किया था, तुझे तात्म नहीं मिला था, वाणी को जानता नहीं था, जरा कुर्बानी का समय आया छोड़ के आ गया, तू तो नीचों में नीच चंडालों से भी नीच है, और तू आकर के सुंदर साथ में ये जहर फैला रहा है। जिन मामलों ने वास्ते राज्य के लोक लाज मर्यादा कुर्बानी करके हंटर खाए वो नीच हो गए, और तू धोखेबाज जो है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऐसे आदमी को शामिल भी किया जाए, पर फिर भी हमने तुम्हें अपने बीच रखा कि फिर तू परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। बता किस ग्रंथ में लिखा है? खूब मुकंदासी की खंडनी की और जो दो सुंदर साथ थे उनको भी फटकारा, और उसके बाद स्वामी जी ने साफ कह दिया, ये जो तुम्हारे अंदर अब नीच ऊंच और पंडित विद्वान और ये छोटा और बड़ा आ गया है, जिसने मेरे साथ रहना है मेरे जैसा भेष बना लो। तुरंत स्वामी जी उठे, पहले अपना सिर मुंडवा करके कानों में कुंडल कफनी पहन, जैसे पहनते हैं लोग फकीर संत होते हैं, वैसे ही जो है अपना लिबास धारण कर लिया, और उन्होंने कहा कि जो अब मेरा साथी है चलो नाइयों के पास। और जो लालदास वगैरह से उनको क्या थे, जिन्होंने सिर राज जी के चरणों में रख दिया फिर तो बालों की कीमत ज्यादा, क्या बाल हो या ना हो क्या करने हैं, फटाफट जो है सिर मुंडवाते चले गए। पर मुकंदास जी जैसे रोए धोए हुए खुशहाल, क्यों? रोज रेशमी शाल बदलने, दुशाले बदलने, बढ़िया पगड़ी बांधनी, यार ये करना, हर पूरा पंडित महाराज जैसा बन के लेना, सब उतरा दिए। मुकंदास ने सोचा भी करूं तो क्या करूं, अगर स्वामी जी को छोड़ के जाऊं तो घर वाले क्या कहेंगे और दुनिया के मुंह पर थूकेगी, और अब अच्छा चलो लो मेरा भी मुंडू उतार दी बेचारे ने पगड़ी सगड़ी, आ दो धोके शाह शब्द लिखे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वितक साहब में लिखा रोए धोए हुए खुशहाल, रोए धो करके जैसे किसी को अच्छा लगा, जिनके दिल में राज्य के भाव है वो बालों को देखेगा, बाल हमारी खूबसूरती है क्या, क्या आत्म खूबसूरत होनी चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए कि शरीर को तो रखें चमका धमका कर, अंदर पाप जहर और विरोध भरते फिर रहे, वो मोमनों के लक्षण नहीं होते। तब जो है खूब फिर सबने मिल करके गीत गाए, भजन गाए, गरबा हुआ, कीर्तन हुए, आनंद मंगल करके अब जो है वहां से आते हैं वापस। इतने में राजा भी आ गया, बस दूर से देख करके प्रणाम करके चला गया, चर्चा सत्संग कुछ नहीं सुना, गरबा हो रहा था, राज के कीर्तन हो रहे थे, इतना उसने देखा और कुछ नहीं। अब स्वामी जी जब आए वापस, बाईजुराज देख के हैरान हो गए कि हैं मेरे जनी ऐसी हालत, पूछा नहीं जाके स्वामी जी से भी क्यों किया, क्यों तो उन पर सवाल किया जाए जिनसे हमारी अकल बड़ी को, तभी से उनसे जाके पूछे जी ये क्या क्या ऐसा किया भाई, क्या बात है या कोई सलाह लेनी हो, जब धनी ने ऐसा किया है तो बाईजुराज जी ने अपने जो है फकीरी लिबास जैसे होना चाहिए फकीरनी भाइयों के वैसे धारण कर लिए, और सब सुंदर साथ ने भी धारण कर लिए। अब क्या होता है ध्यान के साथ, अब राजा जब देख के आया था वहां तो अपने पंडितों को भेजा, क्या भाई पंडितों मेरे पास जुदा जुदा विचार की बातें आ रही हैं, कोई कहते हैं स्वामी जी, कोई कहते हैं ये लुटेरे हैं, कोई कहते हैं ये ठग हैं, कोई कहते हैं ये मुसलमान हैं, आखिर बात क्या है, तुम जाकर के पता दे करके। अब पंडित जो थे वो तो राजा के दरबार के रामायण भागवत गीता के पाठ पठैया थे और पैसे लेने वाले थे, उनको आत्मा का तो कोई दर्द था नहीं, आए स्वामी जी के पास चर्चा सुनने, और उनको देख करके आखिर अक्षतीत हैं, पहचान गए कि ये राजा के दरबार के पंडित हैं, तो सब सुंदर साथ और सभा के बीच में उनकी महिमा प्रशंसा करके कह दिया भाई आज हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि राजा के दरबार के पंडित आए हैं, तो जो प्रश्न कभी हमें नहीं खुलते हैं, हम नहीं जानते हैं, हम तो अनभिज्ञ हैं, पंडित जी महाराज प्रश्न करें, हम प्रश्न करते हैं ये उत्तर देंगे। अब श्रीमद् भागवत के वो प्रश्न पूछ लिए कि बाल मुकंद और बांके बिहारी कृष्ण दो कैसे हो गए, हे पंडित जी महाराज हमारी समझ में तो आया नहीं, ये बताओ राध का तो श्रीमद् भागवत में एक लिखी है लेकिन वृंदा योग माया के ब्रह्मांड में दो राधिका कहाँ से आ गई, क्योंकि बाल मुकंद जी के पास भी राधिका है और बांके बिहारी जी के पास भी राधिका है, अब ये तारतम के बिना पंडितों का भाव भी आ जाए कौन इन प्रश्नों का उत्तर खोलेगा। कुछ और ऐसे अखंड बातें अक्षर अक्षातीत की कर दी, और उधर से कुछ वेदांत पक्ष से कि भाई जब वेद कहता है ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, तो मिथ्या में कण कण के अंदर जो तुम ब्रह्म को मान बैठे हो तो तुम्हारा वेद ही कहता है कि व्यापक जहां तक व्याप रहा है इसका महाप्रलय में नाश हो जाएगा, तो फिर हमें जीव को मुक्ति देने वाला वो पार ब्रह्म का स्थान स्वरूप और कौन से तत्व का रूप होगा। अब पंडित बेचारे कहां से प्रश्न का उत्तर मांगे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रणामी सुंदर साथ में से भी वही दे सकता है जो वाणी को रोज पढ़ता है। ये सारे बातों के प्रश्न अगर आप पढ़ना चाहें तो किरंतन किताब के अंदर पूरा ज्ञान भरा है। आप वाणी को पढ़ेंगे हर एक को समझानी शुरू हो जाएगी। एक बार पाठ कर लीजिए, मानो नहीं समझाती तो घबराओ नहीं, दूसरी बार पढ़ो समझा जाएगी, तीसरी बार पढ़ोगे खुलना शुरू हो जाएगा। पर वाणी पढ़ेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। इस वास्ते जब उन पंडितों ने अब स्वामी जी के प्रश्न नहीं दे सके भरी सभा में, बड़ा बेइज्जती अपमान समझे, जब चर्चा खत्म हुई प्रसाद बटा, अब सारे पंडितों ने मिलकर के सोचा बेटा अब क्या करोगे। अब ये बात अगर राजा के दरबार में पहुंच गई कि पंडितों से प्रश्न पूछे गए थे और पंडित प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सके तो क्या करेंगे, इसलिए यहीं पर थोड़ी देर बैठ जाओ और मिल करके स्वामी जी की निंदा करें वहां चल के। इस वास्ते जो है क्या निंदा करनी चाहिए, ये ना हो कि मेरा जवाब और हो तुम्हारा जवाब और हो, नहीं तो बादशाह पकड़ लेगा। अब सबने मिल करके घड़ंत बातें घड़ ली और जाके कह रहे राजा साहब किसके पास भेजिए, उसको तो आता जाता ही कुछ नहीं, भला किसी ग्रंथ में ये भी लिखा है भगवान दो है, वो तो कहते हैं कृष्ण ही दो है राधिका ही दो है, और हमारी समझ में तो राजा साहब कुछ आते नहीं, कुछ वो कुरान की बातें करते हैं, इनकी तो शक्ल भी देखना जो है ठीक नहीं। राजा की बुद्धि भड़का दी। अब राजा ने कहा जब पंडित कह रहे हैं और ये चर्चा सुन के आए तो ठीक ही बात होगी। ऐसी बात होती थी, चर्चा चल रही थी कि उधर औरंगजेब के दिल में भी टिपर 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 होती रहती थी कि इमाम मेहंदी की खोज करें कहां चले गए। अब पता लगा उन्हें कि वो उदयपुर गए चले, तो आमेर से आमेर के राजा को हुक्म दिया कि उदयपुर के राजा के पास अपना एक एलची भेजो और जाके वो उदयपुर के राजा राणा जिसका नाम है उसको कह देवे कि ए उदयपुर के राजा या तो तू मुसलमान हो जा, अगर तू मुसलमान बन जाएगा तो 5 स्टेटें छोटी छोटी और दे करके तुझे बहुत बड़ा जागीरदार बना दूंगा, और नहीं तो तू लड़ने के लिए तैयार हो जाए तेरा सत्यानाश कर दिया जाएगा। अब वो जो एलची आया वो जाकर के सीधा गुरु से मिला, रामदास उस गुरु का नाम था। अब वो जो था दिल का डर गया, डरपोक था, डरा और डर के राजा के पास चला गया, जाके राजा को कहने लगा कि राजा साहब ये अपने अगर कलमा पढ़ भी नहीं तो क्या है, वो भी खुदा है और परमात्मा ब्रह्म भी खुदा है, और औरंगजेब से लड़ाई करना जनता मारी जाएगी, बेगुनाह औरतों का खून होगा, बच्चे मरेंगे, सारी सल्तनत का नाश हो जाएगा। मथुरिया आया है पैगाम लेकर के, उसका नाम मथुरिया था, इस वास्ते जहां जो औरंगजेब ने भेजा था आमेर के राजा के थ्रू, इस वास्ते जो है एकदम राजा जो राजपूत था सहन नहीं कर सका, मारा धक्का उस अपने गुरु को, कहने लगे तू गुरु प्रोहित होकर और मुझे ये ज्ञान सिखा रहा है कि मैं धर्महीन हो जाऊं, बस तो मेरी रियासत से निकल जा तो अच्छा है, बस छोड़ दे मेरी रियासत को, निकल जा यहां से। और मछरिया को कहा ओ मछरिया जा अपने औरंगजेब बादशाह से कह दे कि फौजों को लेकर के आ जाए, राजपूतों की तलवारें उनकी स्वागत के लिए तड़प रही हैं, हम तलवार से तो झुक सकते हैं, मर तो सकते हैं लेकिन धर्म कभी नहीं छोड़ सकते। मछरिया चला गया पैगाम बादशाह के दरबार, औरंगजेब के पास पहुंचा दरबार में। अब उधर क्या होता है, पैगाम जब आया तो स्वामी जी ने अपने दो सुंदर साथ को राजा के दरबार में भेजा कि ए औरंगजेब राणा साहब आप घबराइए नहीं, लड़ने की कोई जरूरत नहीं, इसने यही तो कहलवा भेजा है ना कि मुसलमान बन जा, तो जो खुद ही मुसलमान नहीं है उसको दूसरों को मुसलमान बनाने का अधिकार ही क्या है, क्योंकि उन्होंने कुरान के लिखे पर विश्वास किया नहीं है। इस वास्ते तुम घबराओ नहीं, आने दो उनको जरा, हम उनसे लड़ेंगे, हम कुरान से बातें करेंगे, और अगर हमें वो कुरान से हरा देगा तब फिर तुम लड़ने के लिए तैयार होना। कोई भी हमारे सवालों का जवाब दे नहीं सकता। अब पास बैठे थे वो सारे पंडित, पंडितों ने कहा क्यों राजा साहब, अब यकीन हो गया है, हम आपको कहते थे ना ये मुसलमान है, अगर अब भी खरियत चाहते हो और अपनी प्रजा को बचाना चाहते हो तो इन स्वामी जी को कृपा करके शहर से निकाल दो, जब युद्ध होगा तो कुछ तो ऊपर से वो लोग गदर डालेंगे और कुछ इन लोग हिंदुओं को भड़काएंगे और अपन जो है मारे जाएंगे। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी ऐसे पंडितों पर कभी पर जो है दोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पितार्थू थे। और फिर दो तीन दृष्टांत दिए, एक तो कि जब मथुरा नित्य वृंदावन मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जी साक्षात 11 साल 52 दिन की लीला कर रहे थे तो कुछ यज्ञ करने वाले वेदांती लोग यज्ञ कर रहे थे और बार बार ये मंत्र पढ़े और श्री कृष्ण परमात्मा नमो नमः स्वाहा पार ब्रह्माए स्वाहा उत्तमा प्रसाए स्वाहा, तो श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ वहां गंगा चला गए। राज्य महाराज थे, दिल में दया आ गई, कह भाई ये ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, चलो जब साक्षात ही आए खड़े हैं और हमारे नाम की पार ब्रह्माय नमो नमः स्वाहा उत्तमा पुरुषाय नमो नमः स्वाहा कर ही रहे हैं तो चलो इनके भी यज्ञ सफल कर दो। अरे ग्वालो जाओ इन ऋषियों को कहो जिस पार ब्रह्म क्षातीत के नाम की आहुतियां डाल रहे हो सामने खड़े हैं, यज्ञ तुम्हारा सफल हो गया, उनको भूख लगी है, भोजन मंगाया। अब ग्वाल बाल चले गए, जैसे कृष्ण कन्हैया जी कहते थे ग्वाल बाल तो वैसे ही करते थे। अब वो घुस गए अंदर और वो चौका चौका लीम पोत करके छुआ छूत के मारे, क्योंकि वो तो परछाई भी नहीं पड़ने देते यज्ञ वाले पंडित लोग, लड़कों को मार मोर थप्पड़ और गुस्से होकर के निकाल दिया। तब इतना गुस्सा चढ़ा के दिल में तो उन्होंने कत्तौर ग्वाल वालों को कहा रे ग्वाल वालों तुम ऐसा करो इन पंतों की जो पंतानियां हैं ना उनके घर चले जाओ, वो हैं अपनी सखियां गोपियां, उनको जाके कह दो श्री कृष्ण जी को भूख लगी है मिठाई मंगाई है। ग्वाल बाल चले गए ब्रिज में, जाकर के सब गोपियों से कह दिया श्री कृष्ण जी जमुना तट पे हैं, आज बहुत खेल के थक गए उनको भूख लगी है, जो तुमने मिठाई कल भंडारे में बांटनी ना वो मंगाई है। उन्होंने कुंडियां दी खोल कहते ले जाओ। अब जितने 10,000 का भोजन बना हुआ था ग्वाल बाल जो लगे ढोने वो अपने यज्ञ कर रहे हैं ओम परमात्मा नमो नमः पार ब्रह्म स्वाहा और थाल कहाँ पहुंच रहे हैं जमुना तट पे, गऊ ने खाए हिरणों ने खाए मोरों ने खाए, अब 10,000 आदमी की रोटी थी, कितने को ग्वाल बाल भी खा लेते, सब ने खूब जो कुछ मिष्ठान मिठाइयां लदी पड़ी थी बनी पड़ी सब खा गए। और दूसरे दिन यज्ञ वो सफल करके अपना ओम नमो शांति 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 ओम। अब उधर 10,000 ब्राह्मण आए हुए भोजन करने के लिए, पंक्तियां लग गई, पत्तल बिछा दिए गए, अब परोसने वालों को हुक्म दिया जाओ भी दरवाजे खोलो, अंदर से थाल भरे भरे मिठाइयों के ला करके परोसो। अब जब दरवाजे खोले तो अंदर एक भी थाल है ही नहीं, वो तो पहले ही नमो नमः स्वाहा हो गए। अब मिठाइयां तो सारी एक दिन पहले ही जमुना तट पे चली गई थी, तो अब क्या परोसे भाई, चलो भाई 10 की रोटी हो 12 खाने आ जाए वो तो गुजारा हो जाएगा, जब एक भी थाल वहां रखा ही नहीं तो किसको परोसे, कितनी शर्मिंदगी हुई। तब उनको गुस्सा चढ़ा पत्नियां पर के कहां चले गए थाल, कहने के महाराज हमें क्या पता, तो परसों से लगे हो श्री कृष्ण परमात्मा है नमो नमः स्वाहा उत्तम पुरुषाय नमो नमः स्वाहा, तुम जैसे ही स्वाहा स्वाहा कर रहे थे वैसे ही थाल उठ उठ करके जमुना तट पे जा रहे थे, हमें क्या पता तुम क्या कर रहे थे वहां, तुम्हारे शब्दों की शक्ति से सारे थाल जमुना तट पे चले गए। गोपियों कृष्ण की आज तुम्हारी हम स्वाहा निकालेंगे, ले लठ और लगे उनको मारने, मारते मारते कहने लगे आज कृष्ण को भी चढ़ के कन्हैया को पूछते हैं, इस नंद के लड़के ने सत्यानाश कर रखा है ब्रज गोकुल का। मैं ले गया वहां मारते मारते, अब राज्य कैसे सहन करें कि मेरी गोपियों पर दंड पड़े, क्या बात है भाई किस लिए इनको मार रहे, क्या कसूर इन्होंने किया है, बस वहां उनको ज्ञान के द्वारा अकल देकर के कहा कि जो कुछ तुमने स्वाहा किया था क्या उस पार ब्रह्म की पहचान की है? हमने मंगवाया था, जिस रूप से भी उनको समझाया अपना दर्शन देकर, कहा कि जाओ, जो तुमने मेरी इन गोपियों के ऊपर हाथ उठा करके इनको दंड कष्ट दिया है, जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक तुम इनके जूठे बर्तन मान दोगे? कह दिया मुंह से, ये राज्य का दिया हुआ शराब है, पंतो आज भी चले जाओ मथुरा वृंदावन में। तो जगह जगह पर मथुरा वृंदावन के पांडे या तो होटलों पर और या घरों में आज भी थालियां मांज रहे हैं, और रबड़ी और मलाइयां लड्डू कौन बेचते हैं मथुरा वृंदावन में जाके देखना, कोई आदमी नहीं बैठा होगा। सब औरतें मलाइयां रबड़ियां जितनी भी वहां पर है औरतें बैठ करके बेचती हैं, और उनके आदमी जो है वो घरों में चौका देते हैं, थालियां लगाते हैं, परोसते हैं और बर्तन मलते हैं, और एक वहां के लिए। और इसी तरह से स्वामी जी ने कहा कि भाई ये जो पंडित लोग हैं इनके पास बुद्धि ही कर्मकांड की है, जैसे इनके ऋषि सबसे बड़े भृगुजी थे। एक बार ऋषियों का बड़ा मेला हुआ, अब उनमें ये बात हो गई भी ये त्रिदेवा जो हैं, अब हम किस देव की पहले पूजा करें ये तो पता करें, छोटा कौन है बड़ा कौन है उस अकेले की कर लिया करेंगे। सबने मिलकर के भृगु जी को चुना, भाई भृगु जी तुम सबसे ज्यादा विद्वान हो, तुम जाओ वैकुंठ में और जाकर के पता करके आओ। अब भृगु जी ने तो परीक्षा लेनी है ना, ब्रह्मा जी के पास भी गए, उनको भी अनाप शनाप शब्द बोलने लगे जैसे अपमान है, परीक्षा लेनी है भाई, जो बड़ा होगा वो अपने आप सहन करेगा। चुप रहे ब्रह्मा जी, महादेव जी के पास गए उनका भी अपमान किया, चुप रहे वो भी। अब उधर गए विष्णु भगवान जी के पास, सो रहे थे लेते हुए थे, तो भृगु ने जाकर के छाती के ऊपर लात मारी, उसके बैठ सो रहे हैं, इतनी अकल नहीं है, तमीज है, तुम्हारे घर के ऋषि आए हैं बैठे सो रहे हो, वैकुंठ क्या मिल गया तुम बड़े अपने आप को वो समझे बैठे हो। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उतकार, क्या प्रभु को गए जो भृग मारी छाती का। भगवान उठे, उठ करके भृगु के चरणों में गिर के उनके चरण दबाने कहने लगे, ऋषि जी महाराज मेरी छाती तो काले पत्थर की बन गई, आपके चरण कमल कोमल को कष्ट हुआ, इस वास्ते क्षमा कर देना, मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं पहले से ही आपका स्वागत करता, इसलिए क्षमा। भृगु जो लज्जित हुए, उस दिन से विष्णु भगवान की सबसे पहले जो है पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने इतना, बड़ों का बड़प्पन ही यही है कि छोटा अगर कोई भूल भी करता है तो दिल पे ना रखें, क्षमा करें, छोटों का काम ही उत्पात करना है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये भृगु जो है उन पंडितों, ये पंडित उसी भृगु की ही तो संतान है, तो जिन्होंने जाके भगवान की छाती में लात मार दी थी, तो ऐसे पिटार क्यों पंडित जो हैं, इनके कामों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अब राजा ने कुतवाल को भेजा कि भाई आपकी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है, उधर औरंगजेब की सेना आने वाली है, और ये स्वामी जी ने तो ढोंग रच रखा है, ये वाकई मुसलमान है, नहीं तो हिंदू कोई कहेगा कि हम कुरान से बातें करेंगे, ये पक्के मुसलमान है, इनको जाके कह दो कि स्वामी जी महाराज संत चलते भले अच्छे होते हैं, 2 साल हो गए आपको यहाँ रहते रहते, हमारे ऊपर बहुत बड़ी भारी मुसीबत आने वाली है, संकट आने वाला है, कृपा करके आप किसी और स्थान से ले जाइए, और जब राजा और मेरे बादशाह चला जाएगा सुख शांति हो जाएगी फिर भले वापस आ जाना। कोतवाल आए, आकर के स्वामी जी से कहा, अच्छा अच्छा सुनने वाला कोई नया सुंदर साहस हो तो क्या सोचेगा, लो भाई ये इनके प्राणनाथ जी हैं जिनको गांव से ही निकाला गया। अब इस दृष्टि से ना सोचिए, अब सोचिए कि ये हुआ क्यों, राजा ने क्यों इसको कहा, क्योंकि उदयपुर के ऊपर इतनी बुरी हालत होने वाली थी, और राजी क्या चाहते थे कि हमारे सुंदर साथ पहले ही यहां से निकल जाए, लेकिन जो दूसरी बुद्धि वाले होते हैं वो तो इन बातों को नहीं सोच सकते। कोतवाल जब आया और आकर के ऐसी बातें कही, तो स्वामी जी ने कहा कि इतना राजा कायर और बुजदिल है, इसने हमें क्या निकालना है, ये धनी ही हमको यहां से निकालना चाहते हैं कि बहुत भारी मुसीबत आने वाली है। तब स्वामी जी ने उदयपुर के सब सुंदर साथ को जो है बुलाया, और बुला के बड़े बड़े उमराव जो रोज चर्चा सुनने आते थे उनको कह दिया, देखो भाई तुम्हारे इस देश के ऊपर बहुत बड़ा भारी संकट आने वाला है, सारा देश जल के राख, तुम्हारी स्टेट जो हो जाएगी टुकड़े टुकड़े और तुम्हारी लोकलाज बहुत बिगड़ जाएगी, छोड़ दो उदयपुर को कुछ दिन के लिए, निकल जाओ दूर, मेरे साथ निकल चलो, हम जाने वाले। पर घरों का सामान, घरों की चीजें जिसमें हम लोगों के मोह फंसे हुए हैं, जैसे आज के युग में सोनी के टीवी हैं, नेशनल VCR हैं, नए नए किस्म के हर एक घर में, मतलब मैं किसी के व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, अगर हमें कोई कहे जी आज घर खाली करो या तो तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा, कोई निकल रहा है, अमृतसर वाले निकल रहे हैं, बम पड़ रहे हैं, मारे पड़ रहे, आतंकवाद हो रहा, कौन निकल रहा, कहाँ जा रहे। इस वास्ते जिन्होंने तो किसी ने दो चार की समझ में आ गई बात, वो निकल पड़े, बाकी सुंदर साथ कोई भी उदयपुर से निकला नहीं। अब स्वामी जी के पास जो सामान वस्त्र भूषण सब सामान थे, सब सुंदर साथ को हुक्म दे दिया, बस दो दो पोशाकें, एक पहने की और एक, और इसके अतिरिक्त किसी ने कोई सामान नहीं उठाना, अपना तुम्बा अपना गोजरी काली कमली, क्यों कि जब ताल के ऊपर स्वामी जी गए थे और ये भेष लिया था तो उस वक्त किरंतन उतरा था, कारी कामरी रे मोह को प्यारी लागे तू, ये उदयपुर के ताल के ऊपर, क्यों जब वो सुंदर साथ के सिर घुट मुट गए थे तो फड़े लालदास जी को लोग मिलने और मुकंदास जी आपस में खूब मिलने लगे, वहां ये आवेश से वाणी उतरी कि ये जो फकीरी लिबास, मतलब एक दिली का, ये नहीं कि हम फकीर ही बन के एक दिली हो सकते हैं, पर वो अवगुण जो आ गया था, अवगुण निकालने के वास्ते सब श्रृंगार को शोभा देवे, यानी हर इंसान चाहता है हम बड़े से बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया से बढ़िया उज्जवल खाएं पे, पर ये चीजें क्या करती हैं, आप लोग आम सभा में देख लेना, मैंने जो बात देखी, यहाँ तो कभी मेरा ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, ब्याह शादियों में आप जाइए या और किसी जगह, किसी ने 2000 की साड़ी पहन रखी हो और भाग्य से उसके पास बेचारी कोई 250 वाली गरीब नहीं बैठ गया, ऊपर ऊपर चढ़ के बैठ ही परा नहीं होके बैठा, ज्यादा बखेंदा नहीं, अब वो तो अच्छी लगती है लेकिन वो 2000 की जो साड़ी कम वक्त है ना, वो नहीं उसके साथ छूने दे रही है, वो उसकी बेइज्जती करवा रही है, ये होता है सब श्रृंगार को शोभा देने, मेरा दिल लग गया तुझसे कि ओ फकीरी क्यों, स्वामी जी ने गोदरी जिसको पंजाबी भाषा में हमारे बुजुर्ग लोग जुल्लियां कहते थे, फटी हुए कपड़ों की चाकियों की बना करके जुल्ली अपने लेटने के लिए बनाई, और टुकियां लगा करके जो है अपनी काली कमरी रखी, और तुम्बे ये जो साधुओं के पास कद्दू के होते हैं जिसमें आगे वो लगा होता है पानी से डालते हैं, हर एक को दो दो दे दिए, एक जंगल जाने के लिए, एक नहाने धोने और जल पीने के लिए, सबके हाथ में मुटका दे दिया और सुमरनी दे दी, माला दे दी, कानों में कुंडल डलवा दिए, ये भेष सबका था फकीरी, सबको बाकी जितने वस्त्र भूषण और अच्छे अच्छे कपड़े थे, बड़े बड़े उमराओं के घर सुंदर साथ को बार दिया, अच्छा भाई तुम नहीं जाना चाहते तो हमारी तरफ से ये प्रसाद लो, ले लो अपने पास रखो, यही चीजें तुम्हें ले मरेगी, अभी वक्त है निकल चलो। स्वामी जी दूसरी बार कोतवाल को जो कहा था, इतने दिन इतने में दूसरे दिन फिर कोतवाल आ गया, बादशाह का पैगाम लेते, स्वामी जी आपने सुना नहीं, कल हमने आपको कह दिया था, क्यों दूसरी बार आ गया, कि इतने में जब औरंगजेब के पास पैगाम पहुंचा था तो औरंगजेब की सेना ने उदयपुर को चारों तरफ से घेर लिया था, जिन्होंने उदयपुर को देखा हो, मैंने देखा तो कभी नहीं था, पर गुजरात के कारण से साबरकांठा जिला साथ लगता है उसके, और सीधी रोड बॉम्बे जाती है, इसलिए देखने को वो मिल गया, चार अंदर शहर बसा हुआ है और चारों तरफ से पहाड़ियों की टीले की टीले, ऐसे शहर को फना करने का बहुत ही आसान रास्ता, अब जो सिपा सलाह था उसने देखा कि उदयपुर तो एक खाई के अंदर से घुसा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ियों को छोड़कर जो बीच बीच में जगह बची हुई थी वहां खंड के खुद गुआ भी और लकड़ियों से भरवा करके अपनी सेना को भेज के अंदर और आग लगा दी। इस कार्य होने से पहले स्वामी जी 2 दिन सुंदर साहब को लेकर के पहले ही निकल गए। अब जिस वक्त ऐसी हालत हुई तो लोग जाए कहां जाए, अब मुसलमानों की सेना ने जब मार काट करना शुरू किया है, संगत साथ की भी वही दुर्दशा हुई जो सारी जनता की हुई, जो सारे शहर की हालत होनी थी, वो संगत साथ पर भी संकट आया, किसी की माँ मर गई, किसी का भाई मर गया, किसी का बाजू कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी को वैसे जख्म हो गए, किसी को मतलब बहुत दुर्दशा हो गई, फकीरों की तरह जैसे यतीमों की तरह कोई बचे खुचे संगत साथ जो लुढ़कते पुड़कते तक नहीं निकले, जाकर के पहाड़ में किसी जगह छुप के एक जगह इकट्ठे हुए,
इतने में स्वामी जी मंदस और पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंचे अभी भी तक आपके सामने आएगी। वहां जो है कृपौरा सब संगत साथ में मिलके फिर एक चिट्ठी लिखी स्वामी जी को के स्वामी जी वालो ये तो करें कृपा राम की चिट्ठी जो स्वामी जी ने पढ़ी कि मेरे सुंदर साथ के हाथ कट गए, घर लुट गए, रिश्तेदार मारे गए, अब भले अंदर राज्य महाराज बैठे हैं, इंद्राप सिंह की आत्म इतना दुखी होकर के रोते हुए चार चार चबइयों की ये पिकरण शेर मंदसौर में उतरे। इसे मेरे धनी उसने बताया था अजी की के वालों हे राज्य महाराज आपने हमको यहाँ पर प्रदेश में भेजा खेल देखने के लिए, फिर एक तो तुमने मेरा रस दिया, एक तो जुदाई की एक रस दिया यहाँ का रंग दिखा रहे हो और दूसरा वासना रुदन करे जलदाव कि हम अंगना हम राज्य महाराज की हूँ और संकट ऐसे हमारे ऊपर आए तो मेरे ख्याल में इंद्रावती जी कहती है प्राणा जी कह रहे हैं राज्य से अंदर बैठे जो उनसे अजी कह रहे हैं कि राज्य महाराज मैंने इस दुनिया में आके देखा है एक मामूली सा यार भी अगर कोई हो तो वो अपनी माशूक को कांटा नहीं चुभने देता, आप हमारे धाम में नहीं होते। ये सेम कर रहे ये सुंदर सा दुखी होगा और उधर पापिया लिखते हो कि मैं तुम्हारे सिर पर एक टांग पर खड़ा, यही आपकी दयालुता है, यही आप हमारे धनी हैं। अगर एक गुनाह के बदले में हमसे एक ही तो भूल हो गई कि आपने मना किया था कि खेल में मैं जाओ और हमने जिद कर ली कि खेल हमने जरूर है देखा है धनी, तुमने मना किया था बेर 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 पर हमने मांग लिया, फिर यही तो गुनाह हुआ था। अगर इस एक छोटे से गुनाह में फिर गुनाह भी कहेगा था लाती की बाहर रोती भी है और अजी भी कहते गुनाह भी कहा का था, हमने किसी पड़ोसी से किसी और से तो नहीं मांगा था, अपने काम से ही मांगा क्या धनी, आप हमारे धन नहीं हो, अगर हमने मांग ही लिया मानो जिद करके इतनी बड़ी सलाह देने से तो घर में लाग लगा के चितो हमें सर को जला के राख कर देते तो हमको दुख भी ना पड़ता, इस दुनिया के चुराहे में ला करके और हमारी ये बेइज्जती और ये अपमान और ये जगह सब उठा रहे हैं।